नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के आप सभी दर्शक मित्रों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। कहावत है कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। सच है, हमारी छोटी से छोटी आदत हो या फिर कोई बड़ा दुर्व्यसन, अगर हम उसमें से निकलना चाहते हैं तो कल या परसों का इंतजार ना करें, पर मुझे आज ही करना है यह दृढ़ निश्चय करें। और देखिए, राही आप हैं, मंजिल आपको पता है। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग एक छोटी सी पहल है आपको रास्ता दिखाने की। आज भी हम कुछ नए सवाल लेंगे और उनके नए जवाब खोजने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका इस शो में। नमस्ते।
ओम शांति।
अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि एडिक्शन के साइन क्या है, हम किसे एडिक्शन कहते हैं और उसका हमें कैसे उसे पहचानना है, लेकिन अब हम इसमें से निकलने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने जरूरी है इसके बारे में जानना चाहेंगे।
हमने अभी तक देखा कि एडिक्शन एक क्रोनिक और रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी और रिलैप्सिंग मतलब फिर से आने की संभावना है। मैं इसको सिंपल करके बताऊंगा कि जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जब ये किसी को हो जाती है तो लोग उसको सहज रूप से स्वीकार करते हैं कि मेरे को अभी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, माना
जी
मेरे को अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो जिंदगी भर मेरे को इसकी दवाई लेनी है,
जी बिल्कुल सही।
और ये पुरानी बीमारियां हैं। वैसे ही एडिक्शन भी एक पुरानी बीमारी है। इसका मतलब आप इस गलतफहमी में मत रहो कि मैंने एक बार दवाई ले लिया तो मुझे फिर से एडिक्शन होने के चांसेस नहीं है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट।
जी
लोग आते हैं हमारे पास छोड़ने के लिए, हमारा ही नहीं पूरे विश्व भर में ऐसा
जी
अनुभव है, आते हैं छोड़ने के लिए, छोड़ते भी है दवाइयों से या काउंसलिंग से,
जी
और फिर क्या होता है, कुछ समय तक अच्छा जाते हैं और कुछ समय बाद वापस चालू कर देते हैं।
क्या कारण है इसके पीछे?
हाँ, तो उसी कारण को समझना है कि जैसे हमने पहले भी देखा कि एडिक्शन एक ब्रेन की बीमारी है,
जी
माना हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि डायबिटीज में हमारे पेट के अंदर पैनक्रियास नाम की ग्रंथि होती है जहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है, तो वो इंसुलिन निर्माण करने वाली जो पेशियां है, बीटा सेल्स बोलते हैं, उनकी संख्या 90% से कम हो जाती है। तो अभी 10% के ऊपर उसको पूरी जिंदगी अभी निकालनी है,
जी
तो वो 10% पेशियां पूरा इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती है, तब बाहर से दवाई लेते हैं जिससे कि वो इंसुलिन का निर्माण हो और शुगर कंट्रोल में रहे।
जी
ऐसे ही एडिक्शन में भी हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें चेंजेस हो चुके रहते हैं,
एडिक्शन की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आए हैं।
चेंजेस आए
जी
हैं, और वो चेंजेस काफी हद तक लंबे समय तक रहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये व्यक्ति अगर चाहे तो छोड़ सकता है, इसका विल पावर कमजोर है, लेकिन आज हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है, ऐसे फोटो है जिसे हम कह सकते हैं कि एडिक्शन के बाद ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज में ब्लड फ्लो, आजकल जैसे सीटी स्कैन एमआरआई होता है वैसे फंक्शनल एमआरआई
जी
करके एक होता है जिसमें हम फोटो देखते हैं कि कितना ब्लड फ्लो उस एरिया में हो रहा है, रक्त का संचार, और हमने देखा जो एडिक्ट्स होते हैं उनके कुछ एरिया में रक्त का संचार कम हो चुका रहता है।
अच्छा, तो जो हम ये
हाँ
कहते हैं कि विल पावर है, आप छोड़ सकते हो, अगर
हाँ
आप में विल पावर नहीं है इसीलिए
हाँ
आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसा कहना भी एक तरह से गलती
हाँ
होगी।
पूरा नहीं है सच उसमें, वो तथ्य पूरा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं न्यूरोबायोलॉजी।
जी
एक होता है साइकोलॉजी, माना आपका जो आप विल
जी
पावर कहते हैं, आपका मन या बुद्धि,
जी
और दूसरा होता है आपकी बायोलॉजी, माना आपका शरीर। तो आपके मस्तिष्क में कुछ चेंजेस हुए हैं, जब तक ये मस्तिष्क के चेंजेस केमिकली रिवर्ट नहीं होते तब तक उसका फॉल बैक होने के चांसेस होते हैं। हमने देखा कि अच्छे से अच्छे सेंटर में डी एडिक्शन का जो इलाज करते हैं नशा मुक्ति का, उसमें रिजल्ट 20 या 30% से ज़्यादा नहीं है, माना 70 से 80% लोग छोड़ते भी है लेकिन वापस चालू करते हैं।
इतना ज्यादा परसेंटेज है, 70 to 80% लोग फिर से
यस,
चालू करते
फिर
हैं,
से
मतलब
चालू करते
ये
हैं।
बहुत बड़ा आंकड़ा है।
हम तो अभी तक वो व्यसन मुक्ति ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते मेडिकल साइंस में, हम एक शब्द जैसे शराब पीने वालों के लिए शब्द इस्तेमाल करते सोबर टी रेट, माना उसने शराब छोड़ा नहीं, सोबर है, और उसका सोबरटी रेट हम देखते हैं कि उसने साल भर में कितने बार लिया और कितना कंट्रोल में लिया,
सोबर्टी रेट
सोबरटी रेट, और वो भी 1-2 साल तक अच्छा रहता है और फिर कम हो जाता है।
मतलब कहने का भाव आपका है, सोबर्टी रेट यानी कभी कभी लेने वाले
हाँ
लोग,
हाँ हाँ
वो रेट आपका साल 2 साल तक मेंटेन रहता है,
अगर
फिर
वो
धीरे धीरे इंसान
हाँ
उसमें और नीचे गिरना
और
शुरू
नीचे
होता
गिरना
है।
चालू हो
जी,
सकता है,
हो
ऐसे
सकता
भी
है।
केसेस है कि पूरी तरह से छोड़ दिया लेकिन फिर से चालू होने के चांसेस है। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को यही कहना चाहूंगा इस शो के बहाने, क्योंकि मेरे पास हजारों पेशेंट आए हैं और उनकी अपेक्षा होती है कि वो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा, इधर एडमिट किया, इधर 1 महीना रखा, उधर 2 महीना रखा, इधर 3 महीना रखा, ये फिर से चालू कर देता है। तो उनको ऐसे लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है या ये
हाँ
कोशिश नहीं करना चाहता है,
जी,
लेकिन कई सारी बातें होती है इसमें। केवल ये नहीं, हम उसको नहीं बोल सकते कि कोशिश, उसके ब्रेन में चेंजेस हो चुके हैं। ये बात जरूर है कि साथ में मन का भी हिस्सा है। आज हम इस डिबेट पे है कि कौन शक्तिशाली है, ब्रेन शक्तिशाली है या माइंड शक्तिशाली है।
जी आप क्या कहेंगे?
मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि हमको मेडिकल साइंस में सिखाया गया कि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, और एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि जब उसके मन से एफर्ट्स नहीं होते हैं, वो अपने मन को शक्तिशाली बनाने में कमजोर पड़ता है, तब उसको दवाइयों का सहारा देना चाहिए, ऐसे
जी
मेडिकल साइंस कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें जो राजयोग सिखाया जाता है, हमने देखा कि हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं या ऐसे कई सारे मरीज हैं जो एडिक्ट्स थे, बहुत पुराने एडिक्ट्स थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने अपना पुराना नशा छोड़ दिया और अभी बहुत साल हो गए वो टोटली फ्री
मतलब आदेश
है,
उन्होंने लिया भी नहीं,
लिया नहीं,
रिलैप्सिंग उनके इनमें कम हुआ।
रिलैप्स कम हुआ। तो ये मेरे को बहुत वंडर लगता है। हम इसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं, हालांकि हमने एक स्टडी भी इसके लिए ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग ने पब्लिश की है, जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में आए हैं, प्राइवेट
जी
साइकियाट्री
जी
में। हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा है, हमारे मेडिकल विंग के डॉक्टर बनारसी लाल है, डॉक्टर वल्सलन नायर है, ये पूरे टीम ने काफी मेहनत करके सब लोगों का डेटा इकट्ठा किया और हमने देखा, माना बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट। 1,000 लोगों का हमने डेटा लिया तो देखा कि 64% लोगों ने 1 महीने के अंदर छोड़ दिया।
तो आपका कहने का भाव है कि मेडिकल में आपने ये पढ़ाई की कि दोनों का रोल अपना है,
यस,
लेकिन राजयोग के द्वारा आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं माइंड पावरफुल है
मोर
ज्यादा।
पावरफुल है, लेकिन उसको पावरफुल बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये
जी
हमारा अनुभव है। जैसे अभी मैं रिसेंट आपको उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हर साल पूरे भारत में एक ही राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ पर व्यसन मुक्ति के ऊपर साहित्य सम्मेलन होता है।
अच्छा
हाँ, और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी एनजीओज हैं जो नशा मुक्ति में या व्यसन मुक्ति में कार्य करते हैं, उनका गौरव किया जाता है, उनको स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 2012 में चालू हुआ था,
जी
महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमको लगातार 4 साल स्टेट लेवल का हाईएस्ट अवार्ड दिया है इस सेवा के
ये तो
लिए।
बहुत अच्छी बात है।
हाँ, खुशी होती है कि हर
जी
साल, और अलग अलग तेरे एरिया में से, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में हमारी व्यसन मुक्ति की, नशा मुक्ति की सेवा चल रही है। तो अभी इस साल का 2015 का अवार्ड, इस समय महाराष्ट्र का गोंदिया करके एक जिला है,
जी
वहां पे मैं गया था। तो जहां पर भी जाता हूँ तो वहां पे हम ट्रेनिंग देते हैं नशा मुक्ति की, तो
जी
वहां पे मुझे एक भाई मिले, उनकी परमिशन से ही मैं उनका नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बारे में बता सकते हैं
अच्छा
कि वो जो भाई है गोंदिया के, वो 40 साल से, 1, 2, 10, 15 नहीं,
चालीस
40 साल
साल
से रोज 2 पैक अल्कोहल, 25 पान तंबाकू वाले, 2 पैक सिगरेट और जुआ खेलना, जो भी एक बिहेवियर का एडिक्शन है,
जी,
नॉनवेज खाना,
एक
ये
और
सब रोज का
फोर्टी
उसका रूटीन था,
इयर्स
40 साल, एक
बहुत
दो
लंबा
साल नहीं।
पीरियड है, बहुत
हाँ,
लंबा।
उनका नाम है त्रिलोचन बग्गा, बग्गा जी का।
अच्छा
उन्होंने कहा अपना अनुभव, जब मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा 40 साल का नशा उन्होंने 1 दिन के अंदर पूरी तरह से छोड़ दिया,
एक
वन
दिन के
डे,
अंदर,
वन डे।
सो आई थिंक इट्स अ मिरेकल। ये
इट्स अ
सबके साथ
मिरेकल,
नहीं हो
सबके
सकता।
साथ नहीं होता है, कम लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों का 7 दिन में भी हो जाता है। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्या मतलब, पता नहीं मैं आया मेडिटेशन किया, मेरे को अच्छा लगा और वो वायुमंडल इतना अच्छा था, पवित्र था, मेरा दिल ही नहीं हुआ। तो ये बहुत टफ है,
जी
कोई पुराना नशा जब छोड़ता है तो उसको विड्रॉल होती है। माना अगर नशा छोड़ दिया तो बहुत तकलीफ होगा,
जी
या नींद नहीं आएगा, या चिड़चिड़ापन होगा, या फिर उसका गुस्सा बढ़ेगा, एकाग्रता की कमी होगी, बहुत सारे विड्रॉल बताए
जी
हैं। जैसे शराब के विड्रॉल अलग होते हैं, हाथ पैर कांपने लगते
जी
हैं, तंबाकू के विड्रॉल अलग होते हैं। तो 2 पैकेट सिगरेट पिता था रोज, और 2 पैक अल्कोहल।
तो फिर उनके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो कुछ मतलब उनको तकलीफ नहीं हुई उसकी वजह
यही
से?
मैं कह रहा हूँ कि हम अभी इसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं कि मेडिटेशन में ऐसा क्या जादू है। चलो एक आध केस होता तो मैं समझ लेता था कि, पर
जी
ऐसे बहुत केसेस है हमारे
जी
पास। हमारा एक और भाई मुझे याद आता है कि जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में ड्राइवर, और
जी
ड्राइवर्स लोगों में काफी नशे होते हैं, तो वो भी काफी सालों से, मुझे याद है 22 साल से वो नशा करता था। क्लीनर था, फिर ड्राइवर,
जी
तंबाकू, सिगरेट, शराब, और वो ऐसी उसकी हालत थी कि 2 2 दिन तक वो दारू में पड़ा रहता था। घर वाले को भी मारता था, वो अपनी बीवी को
जी
मारता था,
जी
बच्चों को मारता था। वो आया ब्रह्मा कुमारी के पास और 7 दिन राजयोग मेडिटेशन उसने किया, 7 दिन के अंदर उसने छोड़ दिया बाईस
जी
साल का नशा। अब ये भी एक मिराकल है, और कोई ऐसा ये नहीं, विड्रॉल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं।
नहीं, सच है ये कि इस तरह से अगर होता है तो मिराकल ही कहेंगे हम
हाँ
उसको।
मना, हम अभी उसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं कि मेडिटेशन से ऐसा क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन के अंदर। मैं
जी
काउंसलर
जी
हूँ तो मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे त्रिलोचन बग्गा जी को मैंने पूछा, गोंदिया के है ये भाई, मुंबई का है, तो मैंने उसको पूछा तुझे क्या मिला ऐसे ब्रह्मा कुमारी में, क्या पता चला? क्योंकि हम एज अ डॉक्टर हम ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करते हैं
जी
कि क्या सच है इसके पीछे, या फेथ हीलिंग है, हम यहाँ पे
जी
कहते हैं कि फेथ है, यहाँ आके मैं ठीक हो जाऊंगा, ये विचार ठीक कर रहा है, क्या है,
मतलब कौन सा ऐसा थॉट
कौन
है
सा ऐसा
जो आपको
थॉट
ठीक कर
है।
रहा है?
हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सचिन भाई, मैं ब्रह्मा कुमारी में आया और मुझे पता चला कि मैं तो देवता हूँ, और देवता ही कभी नशा नहीं करते। बस माना कई बार कौन सी पॉइंट आध्यात्मिकता की आपको क्लिक हो जाएगी, आपकी बुद्धि स्वीकार करेगी और आपका नशा छूट सकता
जी
है, पर ये सबके साथ नहीं होता
जी
है।
वही
ये
मैं पूछने
बात
जा रही
मैं
थी।
आपको जरूर बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के साथ होता है, और ऐसे 1,000 लोग हमारे पास है डेटा। वैसे विदाउट पेपर हर सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी के 5,000 सेंटर है,
जी
हर सेंटर पे कम से कम 5 लोग भी आप पकड़ लो तो भी बहुत लोग हो जाते हैं,
जी
क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो आते आते उनकी बुरी आदतें अपने आप छूट जाते, छोड़ना नहीं
जी
पड़ता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नशे का इलाज केवल दवाइयाँ नहीं है। कई लोग समझते हैं कि दवाई लेने से नशा छूट जाएगा।
मुझे लगता है दवाई का रोल शायद आगे होगा, मतलब एडिक्शन की शुरुआत होने के बाद हम तुरंत ही दवाई ले या फिर बाद में ले या दूसरी कोई और स्टेप्स अपनाएं जैसे आप बता रहे हैं।
जो व्यक्ति आता है वो कौन से लेवल पे है छोड़ने के,
हाँ
है
हाँ
ना?
एग्जैक्टली
कई बार ऐसे होता है कि वो व्यक्ति भी छोड़ना चाहता है, कोशिश भी कर चुका रहता है, कभी छोड़ता है कभी नहीं होता है उसे, तो
हाँ
वो जल्दी छूटने के चांसेस है उसके। कई होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, घर वाले बोल रहे हैं इसलिए वो आते हैं, है
हाँ
ना? तो उन लोग को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कई है वो छोड़ना ही नहीं चाहते।
हाँ उनका अंदर से
तो हाँ, अंदर से
इच्छा
दिल
नहीं
ही
है।
नहीं है और जबरदस्ती लाते हैं, वो
जी
कहते हैं ठीक है 1 दिन रहेंगे इधर, 1 महीना रहेंगे, बाकी हमको आप बाहर आके वापस करना है, तो इट इज वेरी टफ। तो सामने वाला व्यक्ति किस लेवल पे है,
जी
तो उसको हमको उस लेवल तक लाना है जहां
जी
पर उसको महसूसता आए कि मेरे को ये छोड़ने में मेरा भी कल्याण है, साथ में अपने परिवार वालों का भी कल्याण है। तो उसको उस स्तर पर लाना पड़ता है, और उस स्तर पर आने के बाद फिर हमको रिजल्ट अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं।
मतलब पहली स्टेप ये है कि उस व्यक्ति को वहां तक रियलाइज करवाने के लिए हमें लाना पड़ेगा
लाना पड़ेगा।
कि आपका इसमें क्या फायदा है और इसमें क्या नुकसान हो रहा है। तो अगर वो पिक्चर हम उनको विजुलाइज करवाते हैं तो मैं
यस
समझती हूँ कि डेफिनेटली वो कहीं एक जगह पर आके खड़े रहते कि नहीं मुझे अभी छोड़ना है।
यस
लेकिन उसके आगे वाला जो है वो बहुत कठिन है। छोड़ना इंसान चाहता है लेकिन फिर भी छूटता नहीं है।
रियल एग्जाम्पल और एक बताता हूँ। एक बैंक के मैनेजर है, देखो
जी
मैनेजर एक ऑर्डिनरी नहीं है, बैंक में
पढ़े
इतने
लिखे
स्टाफ पढ़े
हैं।
लिखे
जी
हैं, समझदार है और इंटेलिजेंट है, और उनको भी समझता है कि वो जो शराब पीते हैं उसके वजह से उनकी बीवी है, बच्चे हैं, उनको तकलीफ हो रही है और वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो लेकिन आखिर रुक जाते हैं।
जी
हमको परमात्मा बोलते हैं, जिस दिन आपका लेकिन शब्द खला जाएगा तब आप संपूर्णता की तरफ जाओगे। कहीं ना कहीं ये लोग कम पढ़ते हैं, तो मैंने उनको वही कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन दिए, तो उन्होंने खुद बताया कि डॉक्टर साहब मुझे महसूस होता है कि मेरे को पीना नहीं चाहिए, मेरे शरीर के ऊपर, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ फिर भी मेरे शरीर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मेरे को रियलाइज हो रहा है मेरी बीवी मेरे से परेशान है, मेरे बच्चे परेशान है, सोसाइटी में भी पता चलता है कभी कभी, हालांकि मैं इतना ये नहीं करता हूँ, कंट्रोल में लेता हूँ,
हाँ
लेकिन मेरी रिलेशनशिप खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरे को बंद करना है, जो आपने कहा ना चाहता हूँ फिर भी होता नहीं है। मैंने देखा कि इसका लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस है, ये
जी
छोड़ना चाहता है, सिर्फ अभी थोड़ा जहाँ पे फोर्स कम पड़ रहा है अंदर से उसको मेरे को जगाना है।
जी
तो मैंने उसको यही कहा कि क्या आपको लगता है कि आपके ये पीने से आपकी बीवी आपसे नाराज रहती है? बोला हाँ रहती है। आपके बच्चे नाराज रहते हैं? हाँ रहते हैं। अच्छा आपके दोस्तों में भी थोड़ा, बोला हाँ रहता है, मेरा इमेज खराब हो
सब
रहा है।
सब जगह है।
तो मैंने कहा फिर भी आप क्यों रहते हो? नहीं डॉक्टर साहब नहीं रह पाता हूँ मैं उसके बगैर, मेरे को चाहिए, वो शाम का टाइम
वो
हो
रीजन
गया।
है कि ब्रेन में इतने चेंजेस आ चुके हैं, ब्रेन
यस
वापस डिमांड कर
यस
रहा है।
यस तो वो क्या होता है कि एक टाइम होता है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैसे कई लोगों को सुबह उठने की आदत रहती है, तो बराबर वो टाइम हो गया तो अपने आप आंखें खुल जाती हैं,
हाँ
तो वो
हाँ
घड़ी काम कर रही है, खाने का टाइम की घड़ी होती है, वैसे ही एडिक्शन की भी घड़ी होती है।
अच्छा
अगर आपको रोज रात को 7 या 8 बजे या 9 बजे लेने की आदत है, तो बराबर वो टाइम हो जाए ना, आप बेचैन हो जाएगा, आपका बॉडी आपको सिग्नल देते
हाँ
रहेगा।
इवन चाय के साथ भी ऐसा होता
यस
है।
यस यस इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हमारे शरीर की पेशियां बराबर उस टाइम पे एक्टिव होने लगते हैं और डिमांड करने
अच्छा
लगते हैं कि
अच्छा
हमको 2 रोज का कोटा, आज का कोटा
अच्छा
किधर है, और अगर नहीं दिया तो आपको तकलीफ होगी, माना आपको कहीं पर भी मन नहीं लगेगा।
जी
फिर मैंने उसको इतना ही कहा कि क्या आप अपने बीवी और बच्चों से प्यार करते हैं? बोलता हाँ करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके ये करने से उनका खून कम होते जा रहा है, वो चिंता
अच्छा
में ऐसे जो?
हाँ
बोले हाँ चिंता तो उनको काफी है मेरे प्रति। तो मैंने कहा फिर एक ऐसा विजुअलाइज करो कि जब भी आप वो दारू लेते हो, शराब लेते हो, तब आप ये समझो कि आप दारू नहीं ले रहे, आप उनका खून पी रहे करके। तो मैंने उनको बोला इसे विजुलाइज करो, खून पी रहे हैं आप और खून आपके पेट में जा रहा है, और उनका खून पीने से आपको तो थोड़े समय के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मर रहे हैं, उनके शरीर का
हाँ
खून कम होते
जी
जा रहा है।
जी
जैसे मैंने ये विजुलाइजेशन दिया तो उनको वो सहन नहीं हुआ।
नहीं ना, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन ही ऐसा है, अपने
हाँ
लिए नहीं, किसी और के लिए, और जिनको आप प्यार
हाँ
करते हो उनके लिए
हाँ
आप ये बता रहे हो कि उनका खून पिया जा रहा है।
हाँ
जी
तो मैंने उनको कहा कि जब भी आप दारू पी रहे हैं, आप अपने बीवी और बच्चों का खून पी रहे हैं,
ओहो
क्योंकि आपको अगर कुछ हो गया तो वो मरने ही वाले हैं, ठीक है ना?
जी।
देखो आपका शरीर का लॉस होगा, लेकिन उनकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सहारा चला जाएगा। या
जी
तो आप शराब से प्यार करते या बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, अगर फिर भी अभी आप छोटा नहीं चाहते तो ये सिंपल है कि आपको अपने बीवी बच्चों से प्यार है ही नहीं,
दोनों में
भले
से
आप
एक
बाहर से
ऑप्शन
कितना ही
है।
बोलो, नहीं आप प्यार नहीं करते और आप उनको मारना चाहते हो। जैसे मैंने ये बोला, उन्होंने उसी समय कसम खाई कि डॉक्टर साहब मेरे को समझ में आ गए, मैं आज से इसको हाथ नहीं लगाऊंगा,
फिर
एंड ही
उनका
हैज
छूटा,
लेफ्ट। यस उन्होंने छोड़ दिया।
ये बहुत बड़ी बात है, ये परिवर्तन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
हाँ
कई लोग कसम खाते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं
पर ये
होता।
क्या होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, उनके बुद्धि को एक्सेप्ट करने की बात है,
अच्छा
ठीक है ना? एक्सेप्ट होने जाना चाहिए। तो समझाने वाले को भी, सामने वाले को परखना पड़ता है कि कौन से लेवल में है, कौन सी चीज इसमें काम करेगी, ठीक है ना?
जी
हाँ अभी ऐसा विजुअलाइजेशन उसको दिया कि वो सहन करने को तैयार, कुछ भी हो जाए,
जी
पर मैं मेरे बीवी बच्चों का खून नहीं पीऊंगा, क्योंकि
लेकिन क्या ऐसा होता है जो एडिक्ट इंसान है वो जो आप विजुलाइजेशन देते हो उसी को भूल जाएगा?
हो सकता है,
ऐसा हो सकता
हो
है?
सकता है ना, पर वो होता है ना, हम परख के देते हैं उसको, कौन
जी
से व्यक्ति को कौन सा, माना ये तैयार था, सिर्फ इसमें शक्ति नहीं थी, जो आपने बोला ना, नहीं
जी
छोड़ना चाहते पर
जी
हो नहीं रहा है,
हाँ
तो मेरे को सामने वाले को परखना पड़ता है कि इसमें कौन सी चीज काम करेगी।
जी।
तो वो परमात्मा की मदद है, शिव बाबा की मदद हमको मिलती है जब हम जैसे, और एक उदाहरण मैंने पहले भी शायद दिया था कि एक भाई का सिगरेट नहीं छूट रहा था।
जी
अभी वो बहुत पढ़ा लिखा है, कॉन्ट्रैक्टर है, मुंबई के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है, सिगरेट नहीं छूट रहा था। तो मेरे को भी जल्दी था, जल्दी जल्दी में मिला था, तो मैंने ऐसे ही देखा और मैंने कहा ठीक है आप सिगरेट पीते हो, लेकिन मेरे को बताओ कि आपने कृष्ण को कभी सिगरेट पीते देखा है?
हाँ,
तो
ये भी
उसने कहा
बात
नहीं
सही है।
कृष्ण नहीं सिगरेट पीता है। तो मैंने कहा कृष्ण क्या करता है? बोलते नहीं कृष्ण तो बांसुरी बजाता है। तो कृष्ण को बांसुरी में आनंद मिल रहा था ना, और
बस
कृष्ण कभी बीमार नहीं पड़ा था। बस इतना मैंने कहा। तो दूसरे दिन मुझे फोन आया कि उनके दोस्त ने कहा कि डॉक्टर साहब उसने सिगरेट छोड़ दिया।
बहुत सुंदर।
तो मैंने कहा कैसे संभव है, इतना सिगरेट पीने वाला एक दिन में नहीं छोड़ सकता, पर क्या कर रहा है वो अभी? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, उसने बांसुरी लाई है और बांसुरी बजा रहा है वो। और मुझे
जी
ये पता नहीं था कि वो कृष्ण का भक्त था। उसको बात दिल को लग गई कि जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी पूजा करता हूँ, उसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाए, वो बांसुरी में आनंद लेता था।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो यहाँ पे मुझे एक प्रिंसिपल पता चला कि आपकी जहाँ पे श्रद्धा है, आपका जहाँ पे अटैचमेंट है, उसी बात को लेके अगर आप समझाओ ना, तो उसको पता चल गया कि कृष्ण बांसुरी बजाता था, कृष्ण जीवन का आनंद लेता था,
जी
नेचुरल चीजों में आनंद लेता था, और उसको सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो
जी
मैं क्यों करूँ? अगर मैं कृष्ण को मानता हूँ तो मुझे वैसा चलना चाहिए। तो ये बातें कुछ लोगों में काम करती है। तो हमको व्यक्ति देखना चाहिए, परिस्थिति देखना
जी
चाहिए, स्थान देखना
कौन
चाहिए,
से लेवल पर वो
कौन
खड़े
से
हैं।
लेवल पे वो, लेवल ऑफ रेडीनेस उसका देखना चाहिए, उस अनुसार अगर हम उनको समझाते हैं तो काम करता है। हैविंग सेड दिस, मैं
जी
ये जरूर कहूंगा कि केवल इससे काम नहीं होता है,
जी
देर विल बी ऑलवेज सम पीपल जिनको दवाई की जरूरत रहेगी। ठीक है ना,
जी
और नशे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे तंबाकू अलग है, शराब अलग है, हार्ड ड्रग्स अलग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या बिहेवियरल एडिक्शन जो हमने देखे वो अलग
सही।
है। तो हर एक को आपको सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा।
लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात की, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से उनको देना पड़ेगा,
यस
काउंसलिंग भी उनको अलग से करनी पड़ेगी।
यस यस
तो फिर काउंसलर का रोल इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि परखना भी है।
यस अभी हमको स्पष्ट रूप से पता चला है सबसे अच्छा रिजल्ट दवाइयाँ और बिहेवियरल थेरेपी, माने
जी
जिसको हम CBT, अलग अलग तरीके
जी
हैं कि उसको केवल दवाइयाँ नहीं, केवल काउंसलिंग नहीं, उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर्स, दोस्तों का रोल भी होता है,
जी
फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन कई
जी
सारे होते हैं, उसको वापस जिंदगी में लाने के लिए, उसको ऐसे एनवायरनमेंट,
जी जी
ऐसे सोशल, माना उसका केवल नशा छुड़ाना पहलू नहीं है, नशा छुड़ाने के साथ में, नशा छुड़ाना में भी दो स्टेजेस है, एक नशा रोकना और पूरी तरह से छुड़ाना।
जी
रोकना भी जरूरी है, पहला स्टेप है रोकना, बंद करे या कम करे,
जी
उसके बाद जैसे कम करे या बंद करे, उसके बाद पूरी तरह से छूट जाए, उसके बाद उसको वापस सोसाइटी में लाना, उसको
जी
ऑक्यूपेशन
क्योंकि
जॉब उसको
हाँ
मिलना चाहिए, फिर समाज को उसको स्वीकार करना चाहिए। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है
बहुत लंबी।
और इसमें काफ़ी समय जाता है, तो हमको सिस्टमेटिकली जाना पड़ता है।
जी
कई सारे लोग मैंने देखा है कि वो एडवर्टाइज पढ़ के जाते, ये दवाई ले लो इससे शराब छूट जाएगा, बिना बताए छुड़ाए, ये दवाई ले लो इससे ये छूट जाएगा, ऐसे नहीं होता है।
जी
क्योंकि ये लोग फिर थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं फिर वापस चालू करते हैं, इसलिए हमको सिस्टमेटिक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच लेना जरूरी है। इसलिए मैंने शुरुआत में जो कहा कि जैसे हमने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को स्वीकार किया है कि पुरानी बीमारियां हैं और इनकी दवाई लेते रहना चाहिए,
जी
ऐसे ही हमको एडिक्शन को भी एक पुरानी रिलैप्सिंग डिसऑर्डर
जी एक
के रूप
बीमारी के
में
रूप में
देखना
हम उसको
देखना
देखना
चाहिए,
चाहिए।
तभी हम इसको, नहीं तो क्या होता है लोगों का ऐसा है कि इसको इधर रखा फिर भी ये छोड़ नहीं रहा, जाने दो इसको जो करना है, ऐसे नहीं।
हाँ
हम
हाँ
ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं ना,
जी
उसमें भी ये स्टडी किया गया है कि अगर आप ब्लड प्रेशर का गोली छोड़ दो वापस बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज का गोली छोड़ दो, वापिस शुगर बढ़ जाएगा।
जी जी
ऐसे एडिक्शन का आप दवाई या काउंसलिंग छोड़ दो, वापिस वो एडिक्शन के लिए
जी
वापिस
लेकिन
चला
क्या है कि
जाता।
एडिक्शन के पास देखने का नजरिया समाज का कुछ और है, इसके
हाँ
बारे में हम डेफिनेटली आगे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
ओम शांति। आज हमने जाना कि कोई भी एडिक्शन जब लेता है इंसान, तो धीरे धीरे कैसे उसके ब्रेन के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज वो छोड़ दे और फिर से हो नहीं सकता या फिर से वो ले नहीं सकता, लेने के चांसेस फिर से बढ़ते हैं। लेकिन जैसे आज डॉक्टर सचिन ने हमें ये बात बताई कि किस तरह से व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ ऐसे थॉट्स देने की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो इंसान उसमें से निकल सकता है। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।
जी।